पढ़ रहा था
आई वॉज रीडिंग थ्रू द बुक ऑफ एस्रा
और मैं इज़रा की किताब से पढ़ रहा था
एंड चैप्टर 6 वर्स 14 दिस इज व्हाट इट सेज
और छठा अध्याय वचन 14 ये कहता है वो
सेज द एल्डर्स ऑफ द ज्यूज कंटिन्यू टू बिल्ड एंड प्रॉस्पर अंडर द प्रीचिंग ऑफ हगाय द प्रॉफेट
और वहां पर लिखा है तब यहूदी पुरनिए हगय नबी और इद्रो के पोते जक्कई के नबुवत करने से मंदिर को बनाते रहे
Verse 14 says that they continue to preach
और वहां पर लिखा है वो प्रचार करते रहे
and build and prosper under Haggai
और बनाते रहे और वो बढ़ते रहे हगाय के भविष्यवाणी के
नीचे What I felt was it says the elders continue to build and prosper
और वहां पर लिखा है कि जो धर्म वृद्ध है वो बढ़ोतरी पाई उन्होंने और उन्होंने बनाया
It says under the preaching of Haggai
और हगय की भविष्यवाणी के नीचे
They saw prosperity as they preached through the book of Haggai
और उन्होंने बढ़ोतरी देखी जैसे वो हगय की किताब के प्रचार कर रहे
People were built as they heard Haggai preach
और लोग बने उनका निर्माण हुआ जैसे उन्होंने सुना हगय को प्रचार करते
हुए So when I came back from the holiday I heard you know we are going through the series
और जब मैं छुट्टी से लौटा मैंने सुना कि इस श्रृंखला से हम गुजर रहे हैं
as we preach through the book of Haggai we are going to see things being built and people prosper
और जैसे हम हगय की श्रृंखला को देखेंगे हम देखेंगे कि बातें लोग निर्माण होंगे बढ़ेंगे और बातें बढ़ेगी
What is the book of Haggai all about
और हगय की किताब किस बारे में है
What is it there for
और वो यहाँ पर क्यों है
What is the fundamental message of this book
और इस बुक किताब का मुख्य संदेश क्या है
What is the benefit that we can get from this book
और इस किताब से हम क्या उपलब्धि ले सकते हैं
And I know Pankaj and Errol had tried to just give you an introduction of the book of Haggai
और मुझे पता है पंकज और एरल ने इस किताब को लेकर आपको परिचय दिया था
Let me just give you the bit of a story
लेकिन मैं आपको थोड़ा कहानी के रूप में बताना चाहता हूं
God always wanted a community
परमेश्वर को हमेशा से एक समूह चाहिए
For himself,
खुद के लिए
who will represent him,
जो उसको अपने आप को दर्शा
who will
सके,
worship him,
जो उसकी आराधना कर सके,
and make his name known throughout the earth,
और राष्ट्र भर दुनिया भर में उसके नाम को प्रसिद्ध कर सके,
that was God's desire always,
और वो परमेश्वर की इच्छा थी हमेशा
से, that he would have a community who will represent him on earth and his name may be glorified through them,
एक समूह हो जो उसके नाम को प्रदर्शित कर सके और उसका नाम राष्ट्र भर में दुनिया भर में फैल सके,
God chose one man and his name was Abraham.
तो परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना और उसका नाम था अब्राहम.
And God gave Abraham promises.
और परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञाएं दी.
And he said, I will bless you and through you the ends of the earth will be blessed.
और उसने कहा मैं तुमको आशीषित करूंगा और तुम्हारे द्वारा दुनिया भर के लोग आशीष पाएंगे
This man who was worshiping many gods
और ये व्यक्ति जो कई ऐसे देवताओं की आराधना कर रहा
था One encounter with God he began to worship one and only God Jehovah
एक बार परमेश्वर से मुलाकात और वो यहोवा परमेश्वर की आराधना करने लगा
And God gave him a promise and through that promise Today we can look at the ends of the earth as being blessed
और परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा उसने उसे दी और देख सकते हैं हम के पृथ्वी के छोर उस प्रतिज्ञा के द्वारा आशीष पाए
And if you see the story, he had a son and Isaac had a son called Jacob, and Jacob had 12 children.
और उसका बेटा इसाक और इसाक का बेटा याकूब और याकूब के 12 संतान थे
And these 12 tribes of Israel or the 12 tribes of Jacob became Israel eventually.
और यही जो 12 जाती थे वो इस्राएल बन गए बाद
में And through them God began to influence and bless the nations of the world
और उन्हीं के द्वारा परमेश्वर दुनिया भर के राष्ट्रों को आशीषित करने लगे
And if you see the narratives if you see the story of the Bible you will see how God works through people
और अगर आप कहानी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे परमेश्वर लोगों के द्वारा कार्य करता है
And You know, through that God began to speak to the world what he wants to do in the days to come.
और उनके द्वारा परमेश्वर बातें करने लगा कि आने वाले दिनों में वो क्या चाहता है.
And a time came, God told Solomon, one of the grand great grandchildren of Abraham, said to build a temple.
और एक समय आया परमेश्वर ने सुलेमान को जो अब्राहम का पोता था उसको एक मंदिर बनाने के लिए कहा.
And that temple, God came and showed His presence.
और उस मंदिर में परमेश्वर आया और उसने अपनी उपस्थिति दिखाई.
Can you just put that picture if anyone there? And what happened is that a king Nebuchadnezzar. This is just a replica. It's not the actual.
ये सही वाला नहीं है लेकिन.
And this stood as a magnificent edifice in the whole history of mankind.
और ये बहुत ही महान ऐसा मंदिर था इतिहास में.
And God was in the midst of them.
और परमेश्वर वहाँ था उनके बीच.
And people came from all over the world.
और लोग दुनिया भर से आए.
Worship God.
और परमेश्वर की यहाँ पर आराधना की.
But not very soon, the Nebuchadnezzar, the king of Babylon, came and destroyed this temple.
और बहुत ही जल्दी बेबीलोन का जो राजा था उसने आकर इस मंदिर को विनाश कर दिया.
And it became like this.
और विनाश के बाद मंदिर इस तरह से हो गया था.
And now we are in Haggai, where the people of God coming back and they want to rebuild this temple.
और अब हम हगई में हैं जो यहाँ पे परमेश्वर के लोग आकर दोबारा इस मंदिर को बनाना चाहते हैं.
Okay, you understand the picture?
क्या आपको चित्र समझ में आया?
And they rebuild the temple.
और वो मंदिर को फिर से बनाते हैं.
And it looked like this.
और वो इस प्रकार का दिखता है.
Next one, if it maybe the next one. Okay, this is again. It's a replica. It's not the actual. It's again. Once again, it was greater than the former one.
और वो अभी के मंदिर से बहुत ही महान मंदिर था ये.
Okay, but even this temple was destroyed in AD 70.
और 70 में ये मंदिर का भी विनाश हो गया.
But God's intention was not to dwell in the temple. God's intention was to live in people, and God wanted our bodies to be the temple of God.
लेकिन परमेश्वर इस मंदिर में नहीं लेकिन लोगों के अंदर निवास करना चाहता था.
So what God wants to teach.
तो परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है हगई की किताब से?
Let me just share a few scriptures.
मैं कुछ वचन आपको बताऊं.
It's a book God where God speaks about His favor.
और ये किताब है जहाँ परमेश्वर अपनी प्रसन्नता के बारे में बात करता
है. हगई chapter 1 verse 5 and 6. This is what it says.
हगई पहला अध्याय वचन 5 और 6 ये कहता है.
Therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways. You have sown much. Harvested little. You eat, but you have never enough. You drink, but you never have your full. You clothe yourself, but no one is warm. And he who earns wages does so put them into a basket or in the bag with holes.
इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपनी अपने चाल चलन पर ध्यान करो. तुमने बहुत बोया, परंतु थोड़ा काटा. तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता. तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती. तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं. और जो मजदूरी कमाते हो वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखते हो.
In chapter 2 verse 19. Is the seed yet in the barn? Indeed, the wine, the fig tree, the pomegranate, the olive tree have yielded nothing, but from this day on, I will bless you.
Haggai 2 वचन 19. क्या अब तक बीज खेत में हैं? अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले? परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूँगा.
We can see utter hopelessness. People in exile. There's nothing happening.
आप देखते हैं वहाँ पे निराशा है, निर्वासन है, और वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है.
And God comes and says, "From this day on, I will bless you."
और परमेश्वर आता है और कहता है, आज के दिन से मैं आपको आशीषित करूँगा.
I'm going to cause my favor to rest upon you.
और मेरी प्रसन्नता अब से आप पर होने वाली है.
Haggai speaking of a new beginning.
और हग्गई यहाँ पर एक नई शुरुआत के बारे में बता रहा है.
I want to bless you, and I will bless you.
मैं आपको आशीषित करना चाहता हूं और मैं आपको आशीषित करूंगा.
It's a similar thing that God said to Abraham. I want to bless you and I want to make you a blessing to the nation.
और वही बात परमेश्वर अब्राहम से कहता है, मैं आपको आशीषित करना चाहता हूं और आप राष्ट्रों के लिए आशीषित होंगे.
You know something, if God comes today, he would say, I want to bless you and I want to make you a blessing to the nation.
अगर परमेश्वर आज भी आ जाए तो वो कहेगा, मैं आपको आशीषित करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप राष्ट्रों के लिए आशीष बने.
Hallelujah. We are the people of God.
हम परमेश्वर के लोग हैं.
He came to the people in exile, hopeless, nothing there happening. And God says, from today onwards, I will bless you.
जो लोग निर्वासन में थे वहां पर परमेश्वर आया, वहां पर कोई आशा नहीं थी और परमेश्वर कहता है, आज थे मैं आपको आशीषित करूंगा.
It's a story of God turning obscurity into prominence.
और देखता है यहाँ पर कहानी है जहां पर परमेश्वर कार्य करता है.
There's 50,000, this magnificent nation, you know, became just 50,000 people.
और यहाँ पर इतना बड़ा जो राष्ट्र था केवल 50,000 लोग हो गए.
And God says, I will bless you.
और परमेश्वर कहता है, मैं आपको आशीषित करूंगा.
And you will once again become a blessing to the world.
और फिर एक बार आप दुनिया भर के लोगों के लिए आशीष बन जाओगे.
If I was there, can you just take care of those two kids? Who's it? Can you imagine if I was there, I would have said, no way.
आप सोचो अगर मैं वहां पर होता तो मैं कहता बिल्कुल नहीं, नामुमकिन है ये.
Can you imagine the last 70 years?
क्या आप सोच सकते हैं गए 70 वर्ष?
Nebuchadnezzar has come and destroyed everything that we had.
राजा नबूकदनेस आता है और जो कुछ भी है वहां पर उसका विनाश कर
देता है. There's no hope left.
और अभी कोई आशा नहीं बची है.
And God says, I will bless you.
और प्रभु कहता है, मैं आपको आशीषित करूंगा.
I will make you a blessing to the nation.
और मैं राष्ट्र भर के लिए आपको आशीष बनाऊंगा.
What do the people have to do?
और लोगों को यहाँ पर क्या करना है?
How did they tap into that favor of God at that time?
और उस परमेश्वर की प्रसन्नता का उपयोग उन्होंने कैसे किया?
That's what I want to share this morning.
और वही मैं आपसे बांटना चाहता हूँ.
How did the people at that time, the 50,000 remnant, how did they tap into God's favor?
वो 50,000 लोग जो वहाँ पर थे, परमेश्वर की प्रसन्नता का उपयोग कैसे किया उन्होंने?
How can we tap into God's favor?
हम परमेश्वर की प्रसन्नता का उपयोग कैसे कर सकते हैं?
How can we enjoy this blessing that he wants is pronouncing.
और जो उसकी आशीष है उसका उपयोग उसका फायदा हम कैसे ले सकते
हैं? First of all, they had to believe.
और सबसे पहली बात उन्हें विश्वास करना था.
The entire people have to believe that God will bless them.
और उन लोगों को विश्वास करना था कि परमेश्वर उन्हें आशीषित करेगा.
When everything is not going well with you.
जब हर एक बात आपके साथ ठीक नहीं होती है.
Every situation seems to be so gloom.
और सारी स्थिति आपको इतनी निराशा वाली दिखाई देती है.
God says believe.
परमेश्वर कहता है विश्वास करो.
हालेलुया.
हालेलुया.
That's why Christianity is so different.
इसलिए मसीहता इतनी अलग होती है.
It begins by faith.
और वो विश्वास से ही शुरू होती है.
Abraham was no one. He was worshiping all kinds of God, and God comes and says, "You are blessed, and I want to make you a blessing."
अब्राहम कोई नहीं था. वो अलग-अलग देवताओं की आराधना करता था और परमेश्वर ने कहा, "मैं आपको आशीषित करूंगा."
You know, Abraham didn't have to do anything.
आप जानते हैं अब्राहम को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी.
He didn't have to do anything except believe.
उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, करने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल विश्वास करना था.
Abraham actually did nothing.
दरअसल में उसने कुछ भी नहीं किया.
He just believed.
केवल विश्वास किया.
He didn't have a son.
उसके पास बेटा नहीं था.
God says, I'll give you a son.
परमेश्वर ने कहा, मैं तुमको बेटा दूंगा.
He was 75.
वो 75 वर्ष का था.
But you still have hope.
75 वर्ष का था.
At 75, God says, you will have a son.
75 वर्ष में परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें बेटा दूंगा.
He had to believe.
और उसे भरोसा करना था, विश्वास करना था.
He was 99 years old.
और उसने रुखा जब तक वो 99 वर्ष का हो गया
God
था.
God says, next year you will have a son.
और प्रभु ने कहा, अगले साल तुम्हारा बेटा होगा.
You know, if I was Abraham, I would have said to God, this is enough.
और मैं अब्राहम होता तो मैं प्रभु को कहता, प्रभु बस हो गया.
This is enough. 25 years I've been waiting.
25 साल मैं रुका हूँ.
But it says, against all hope, Abraham believed.
लेकिन वहाँ पे लिखा है हर एक आशा के विरोध भी अब्राहम ने विश्वास किया.
We got to be a people of faith. If we are not a people of faith, we cannot tap into the favor of God.
हमें विश्वास के लोग होना है. अगर हम विश्वास के योग लोग नहीं हैं, तो हम परमेश्वर की प्रसन्नता का उपयोग नहीं कर सकते.
First ingredient in receiving God's favor is to believe.
और पहली बात जो परमेश्वर की प्रसन्नता अगर पाना है तो हमें विश्वास करना होगा.
He is for you, he is not against you.
वो आपके लिए है, आपके विरोध में नहीं है.
He wants to bless you and he wants to make you a blessing.
वो आपको आशीषित करना चाहता है. वो चाहता है आप लोगों के लिए आशीष बने.
If you are here for the first time, I want to encourage you, believe in Jesus.
अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करूँ, आप यीशु पे विश्वास करो.
Simply believe what he did on the cross of Calvary.
केवल विश्वास करो जो उसने कलवरी के क्रूस पे आपके
you will
लिए
receive
किया
a brand new life.
आप एक नया जीवन पाओगे.
And he will start a new story with you the way God did with Abraham.
और वो आपके साथ एक नई कथा शुरुआत करेगा जैसे उसने अब्राहम के साथ किया था.
Hallelujah.
Hallelujah.
Those people had to believe.
उन लोगों को विश्वास करना था.
You know, that's what Haggai and Zechariah did almost 4.5 to 5 months. They were preaching to this 50,000 people. Says believe.
और हग्गई और जकरिया ने चार साढ़े चार पांच वर्ष तक यही किया, लोगों को प्रचार किया. साढ़े चार पांच साल महीनों के लिए यही किया, बस प्रचार किया कि विश्वास करो.
Jeremiah has prophesied after 70 years God will come.
यर्मियाह ने भविष्यवाणी की कि परमेश्वर आएगा.
Jeremiah 29 verse 10.
यर्मियाह 29 वचन 10.
For thus says the Lord, when the 70 years are completed for Babylon, I will visit you. I will fulfill to you my promise and bring you back to this place. It's okay. Yeah. Says God says I will come and visit you.
और इस कारण उनका अंधेरा और जिस फलन भरा होगा. और परमेश्वर का कहता है कि मैं आऊंगा, आप ये विश्वास करो.
I will bring you back to this place.
और मैं आपको इस जगह पर दोबारा लेकर आऊंगा.
And Haggai said 70 years are over, God is coming.
और हग्गई गया कहा कि 70 वर्ष पूरे हो गए हैं, परमेश्वर आने वाला है.
Restoration of God's people are at hand.
और परमेश्वर के लोगों का पूर्ण स्थापित अब होने वाले ही है.
And the people had to believe.
और लोगों को ये विश्वास करना पड़ा.
I want to encourage you today. You know, whoever is here, I want to encourage you. Faith is the essential part of our lives to see God's blessing.
और जो कोई लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करूँ कि विश्वास एक बहुत ही मुख्य पदार्थ है हमारे जीवन का.
God is the one who initiates things.
और परमेश्वर ही है जो चीजों की शुरुआत करता है.
Our faith itself is initiated by God.
हमारे विश्वास की शुरुआत भी परमेश्वर के द्वारा
ही हुई है. God initiates our stories.
और परमेश्वर ने हमारी कहानी की शुरुआत
की. That's why he says, it is said he is the author of our lives.
और इसलिए लिखा है कि हमारे जीवन का लेखक परमेश्वर है.
You will see nothing in the Bible where people have initiated. It is God who always initiated things.
और बाइबल में आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि लोगों ने शुरुआत की. हमेशा परमेश्वर ने ही शुरुआत की.
And if God is initiating things, I want to encourage you, have faith.
और अगर परमेश्वर बातों की शुरुआत कर रहा है, मैं आपको प्रोत्साहित करूं, आप विश्वास करें.
Whatever we do, by faith, God will bless it.
और हम विश्वास के द्वारा जो कुछ भी करें, परमेश्वर हमें आशीषित करेगा.
Your job, your marriage.
आपका काम, आपका विवाह.
Your children, your business.
आपका बच्चा, आपके व्यवसाय.
Your plans for the future.
आपके जो भविष्य की योजनाएं आपने की है,
if there is faith, God will bless it.
अगर विश्वास है तो परमेश्वर उसको आशीषित करेगा.
God is looking for faith this morning.
और परमेश्वर विश्वास की खोज में है.
Luke 18 verse 8 it says, when the Son of Man comes, will he find faith on earth?
लूका 18 में लिखा है, जब परमेश्वर का बेटा आएगा तो क्या उसको प्रसन्नता दिखाई देगी पृथ्वी पर?
Faith unlocks God's favor.
और विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर की प्रसन्नता प्रबल होती है.
Will you believe his promises?
क्या आप उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करेंगे?
Will you believe God for the future?
क्या आप भविष्य के लिए परमेश्वर पर विश्वास करेंगे?
What kind of house we want to build?
किस तरह का घर हम बनाना चाहते हैं?
We want to build a house of faith.
हम विश्वास का घर बनाना चाहते हैं.
Amen. Say to the person next to you, we want to build a house of faith.
अपने पड़ोसी से कहे हम विश्वास का घर बनाना चाहते हैं.
या वी वांट टू बिल्ड
हम बनाना चाहते हैं ऐसा घर जो विश्वास का हो.
सेकंडली व्हाट वी सी हियर
और दूसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं,
they had to make priorities for God.
उन्हें प्राथमिकताएं रखनी थी परमेश्वर के लिए.
Haggai came into the scene only after the foundations were laid for the new temple.
और Haggai यहाँ पर आया जब बुनियाद रखी गई नए मंदिर के लिए.
The foundations were laid in B.C. 536.
और बुनियाद रखी गई थी यीशु के जन्म होने से पहले 536 साल तक.
Okay. For the next 16 years after the foundation was laid, there was severe opposition.
बुनियाद रखने के बाद बहुत ही विरोध हुआ वहाँ पर.
For almost 16 years there was opposition.
और 16 वर्ष तक विरोध होता रहा.
And people were losing faith.
और लोग विश्वास खो रहे थे.
And because of the severe opposition, people changed their priorities from doing God's building or God's house, they were building their own houses.
और विरोध आ रहा था इसलिए उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बदल दी. परमेश्वर का घर बनाने के बजाय वो अपना घर बनाने लगे.
In B.C. 520, Haggai and Zechariah comes in the scene and they preaches and they says, change your priorities. The house of God is in ruin. Let's rebuild.
और B.C. 520 में हग्गाई और जकरिया आए और उन्होंने कहा अपनी प्राथमिकताओं को बदल दो. खुद का घर बनाने के बदले परमेश्वर का घर बनाओ.
Preaching did something in people.
और प्रचार के कारण लोगों में कुछ होने लगा.
The people's priorities changed.
और लोगों की प्राथमिकताएं बदल गई.
You know, there's a particular phrase that is used in the book of Haggai.
और हग्गई की किताब में एक वचन का इस्तेमाल हुआ है.
It says, "Consider your ways."
और वहाँ पर लिखा है अपने चाल चलन पर ध्यान दो.
Three times it says, "Consider your ways."
तीन बार वहाँ पर लिखा है अपने चाल चलन पर ध्यान
दो. Another translation says, "Give careful thought to your ways."
और एक उसका अनुवाद इस प्रकार से है कि अपने चाल चलन पर आप करीबी से ध्यान दो.
In some way God is saying change your priorities.
और कुछ तरीके से परमेश्वर कह रहा है अपनी प्राथमिकताओं को बदल.
You are busy doing things for yourself.
आप खुद के लिए ही काम करने में व्यस्त थे.
But pay attention to God.
लेकिन परमेश्वर पर ध्यान दो.
About His glory.
उसकी महिमा पर ध्यान दो.
His temple.
उसके मंदिर पर.
His church.
उसकी कलीसिया पर.
Priorities change for them.
उनके लिए प्राथमिकताएं बदल गई.
As a result, there was a magnificent temple that was
built. और उसके कारण बहुत ही महान खूबसूरत मंदिर वहां पर बनाया गया.
You know what happened when we go through difficulties?
आपको पता है जब हम मुश्किलों से गुजरते हैं तो क्या होता है?
And in India, we have so much of difficulties. Am I right?
और भारत में कितनी मुश्किलें हैं हमारे पास? मैं ठीक कह रहा हूँ?
We just went for a holiday and come back and said, "Wow, there it is." Things are quite easy.
और हम छुट्टी से बस यहाँ लौटे और हमने सोचा रे वहाँ बातें कितनी आसान थी.
You just come to Mumbai city and you know there's difficulties all over.
और बस मुंबई में आते हैं और मुश्किलें बस सब जगह है.
You know what happened when opposition and difficulties come?
जब विरोध आता है और मुश्किलें आती है तो पता है क्या होता है?
We pay more attention to our own things.
तो हम अपनी खुद की बातों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं.
You know, we want to make our life secure.
हमें हमारा जीवन बस सुरक्षित करना
है. We want to earn little more money.
और थोड़ा ज्यादा पैसा कमाना है.
You know, we want to look after, make sure our children are doing well.
और हम देखना चाहते हैं ठीक ठाक हमारे बच्चे करें, सब
कुछ ठीक हो जाए. We want to have houses for ourselves.
और हमें हमारे लिए खुद के लिए घर बनाना होता
है. None of these things are wrong.
और ये सब कुछ करना गलत नहीं है.
I want to say none of these things are wrong.
मैं आपको बताऊँ ये करना गलत नहीं है.
But God wants to, in some way, God wants to ask us. Is God picture in any of your priorities in your life?
लेकिन परमेश्वर हमें पूछना चाहता है कि हमारे जीवन की प्राथमिकताओं में क्या कहीं परमेश्वर है?
Is God number one in your life?
क्या परमेश्वर आपके जीवन में पहला है?
Don't lose faith, but finish well.
विश्वास को खो मत, लेकिन अच्छे से पूरा करो.
Consider your ways.
अपने चाल चलन पर ध्यान दो।
I want to just encourage you this morning.
मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ सुबह, आज की सुबह।
God wants us to make adjustments for Him.
परमेश्वर अपने लिए बातें ठीक ठाक करना चाहता है।
God wants us to use our time well for His glory.
परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे समय को अच्छा इस्तेमाल करें उसकी महिमा के लिए।
Not waste our time.
हमारे समय को व्यर्थ ना करें।
You know, watching TV and other things.
TV देखना और दूसरी सारी बातें।
But God wants us to be people who will watch and pray for His second coming.
लेकिन वो चाहता है हम ऐसे लोग बने जो प्रार्थना करें क्योंकि वो आने वाला है।
God wants us to change our priorities.
परमेश्वर चाहता है हम हमारी प्राथमिकताओं को बदल दें।
What kind of house God wants us to build?
कैसा घर चाहता है परमेश्वर हम बनाएं?
A house with right priorities.
ऐसा घर जो सही प्राथमिकताओं से बना हो।
Hallelujah.
Hallelujah.
I want to encourage you. Look at your life.
मैं आपको प्रोत्साहित करूं आपके जीवन को देखें।
Consider your ways, it says.
अपने चाल चलन पर आप ध्यान दें।
Will you take little time with God and ask God?
क्या आप थोड़ा समय लेंगे परमेश्वर से और पूछेंगे परमेश्वर से?
Is there something that I need to change?
क्या कोई बात है जो मुझे बदलनी है?
Because change is one of the most difficult thing in life.
क्योंकि बदलाव करना ये जीवन की सबसे मुश्किल बात होती है।
For Haggai and the people of God, they have to make massive changes.
हगई और परमेश्वर के लोगों के लिए उनको बड़े-बड़े ऐसे बदलाव करने पड़े थे।
And once again, God rebuilt that nation.
और फिर से परमेश्वर ने उस राष्ट्र को बनाया।
Thirdly, I want to share this.
और तीसरी बात मैं ये बांटना चाहता हूँ।
To see God's favor.
परमेश्वर की प्रसन्नता को देखना।
Obedience is the vital part of seeing God's favor.
और आज्ञाकारिता वो बहुत ही मुख्य बात है परमेश्वर
की
प्रसन्नता को देखना। Haggai
chapter 1 verse 12 it says they obeyed the voice of the Lord.
और हगाई 1:12 वचन में लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना।
They obeyed the message what Haggai preached.
और जो संदेश हगाई ने बांटा उसकी आज्ञा उन्होंने मानी।
They didn't procrastinate, they didn't wait for another time, they obeyed the Lord.
और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी वो और एक दिन के लिए रुके नहीं रहे।
The message was go to the mountains and cut timber and come back and build the house.
और वहां पे संदेश था जाके पहाड़ों पर जाओ और लकड़ी तोड़ के लाओ और घर बनाओ।
Build the house for God.
और परमेश्वर के लिए घर बनाओ।
That exactly that's what they did.
और वही उन्होंने किया।
They kept aside all the other things and they gave priority to God and they obeyed God and brought the timber and began to build the temple.
उन्होंने सारी बातों को छोड़कर उन्होंने लकड़ी लेकर आए और परमेश्वर के मंदिर घर को बनाने लगे।
And I want to just ask you something.
और मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूं।
If God is putting a finger on you.
अगर परमेश्वर आप पर उंगली रख रहा है।
Maybe small things, big things.
शायद छोटी बातें या बड़ी बातें।
Are we obeying the Lord?
क्या हम आज्ञा मान रहे हैं परमेश्वर
की? Obedience is the key to unlocking the favor and the blessing of God.
आज्ञा के द्वारा ही हम परमेश्वर के आशीष और प्रसन्नता को पा सकते हैं।
Even we saw that video.
हमने वो वीडियो भी देखा।
About giving.
देने को लेकर।
We don't propagate so much about giving in our church.
हम देने को लेकर इतनी बातें नहीं करते हमारे
कलीसिया में। But I really feel in this time God wants us to stretch ourselves.
लेकिन मुझे लगता है परमेश्वर चाहता है समय में अपने आप को तान ले।
God wants us to give.
परमेश्वर चाहता है हम दें।
So the ends of the earth may be blessed.
ताकि पृथ्वी के छोर आशीष पा सके।
It says in 2 Corinthians chapter 8 it says they gave beyond their ability.
और 2 कुरिन्थियों की किताब 8वें अध्याय में लिखा है उनकी क्षमता से भी बढ़कर उन्होंने दिया।
So that the kingdom when you know regions beyond.
ताकि परमेश्वर का राज्य क्षेत्र अपार।
Amen.
Amen.
Is God speaking to you?
क्या परमेश्वर आपसे बात कर रहा है?
Are you listening to the voice of God?
क्या आप परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं?
If you're listening, are you obeying what God is saying?
अगर आप सुन रहे हैं तो क्या आप आज्ञा मान रहे हैं प्रभु जो कह रहा है उसको लेकर?
There is such a joy when we obey him and you know see God's favor flowing into our lives.
मैं आपको बताऊं कि कितना आनंद होता है जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं उसकी प्रसन्नता हमारे जीवन में
आती है। So how do we tap into God's grace?
तो परमेश्वर के अनुग्रह को हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं?
By believing.
विश्वास करके।
Making right priorities.
सही प्राथमिकताएं रखकर।
By obeying the voice of God.
और परमेश्वर की आवाज की आज्ञा मानकर।
And finally.
और अंत में।
Believing a glorious church.
महिमा में कलीसिया के ऊपर विश्वास करके.
They spoke about a glorious church.
उन्होंने ऐसी महिमा में कलीसिया के बारे में बात की.
It says the present house will be greater than the glory of the former house.
और उन्होंने कहा कि अभी का जो घर होगा वो पिछले घर से बहुत ही महिमा में होगा.
And in this place I will grant peace.
और इस जगह पर मैं शांति दूंगा.
If you look at the book of Haggai, it was not just speaking for that time, it spoke about the years to come.
और अगर हगाई की किताब में आप देखें उसी समय के लिए नहीं आने वाले वर्ष के लिए भी बातें
की गई. There are so many phrases that was beyond their time into the time of Jesus and even now.
और वहाँ पे लिखा है अभी के समय के लिए नहीं लेकिन यीशु के समय के लिए और अब के समय के लिए.
They saw something beyond the temple that they were making into the future.
और जो मंदिर वो बना रहे थे उससे भी बढ़कर भविष्य की बातें उन्होंने देखी.
Haggai 2:7 it says, I will shake the all nation and what is desired by all nations will come and I will fill this house with glory.
Haggai 2:7 में लिखा है मैं सारी जातियों और कंपक पाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा. सेनाओं के यहोवा का यही वचन है.
The Bible, the desire of the nation is Jesus.
अगर आप शास्त्र को देखें तो यीशु राष्ट्र की इच्छा यीशु मसीह.
The desire of the nations will come.
और ये राष्ट्र की इच्छा है कि वो आएगा.
Speaking about the church, it will come.
और वो कलीसिया के बारे में बात कर रहा है कि वो
आएगा. I will fill this house with glory.
और वो कह रहा है कि मैं इस घराने को अपने महिमा से भर दूंगा.
And the glory of the present house will be greater than the glory of the former house.
और अब के घराने की महिमा पिछले घराने से बहुत बढ़कर
होगी. And on the day of Pentecost we can see, you know, people from all over the world gathering and God pouring out his spirit. That was the former house that is talking about, the present house.
और पेंटिकॉस्ट के दिन हम देखते हैं राष्ट्र भर के लोग आते हैं और परमेश्वर की आत्मा वहां पर आती है.
And that which was limited to the Jewish community, it went to all over the world.
और जो वहां पर यहूदाओं के लिए ही था, यहूदियों के लिए, अब वो दुनिया भर के लोगों के लिए हो गया था.
Hallelujah.
Hallelujah.
And in the last verse in Haggai chapter 2 verse 23.
हगाई 2 वचन 23 आखिरी वचन.
It says, on that day declares the Lord Almighty, I will take you. My servant Zerubbabel, son of Shealtiel, declares the Lord, I will make you like my signet ring, for I have chosen you, declares the Lord Almighty.
सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, उस दिन हे शालतियेल के पुत्र तेरे दास जरुबेबल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा. यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैं तुझी को चुन लिया है. सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है.
It's talking about Jesus.
और वो यीशु के बारे में बात कर रहा है.
I will make you my signet ring.
और मैं तुमको मेरी वो खास अंगूठी बनाऊंगा.
It is not just Zerubbabel, it is about Jesus who is going to come.
वो केवल जेरुबेबल के बारे में नहीं लेकिन यीशु जो आने वाला है उसके बारे में
है. It's talking about the temple that will come down from heaven, Jesus himself.
और वो मंदिर जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आएगा वो स्वयं यीशु है, उसके बारे में बात कर रहा
है. That's why Jesus said, if you can just put that picture of the temple, it says, if you break down this temple, I will build it up in 3 days' time.
इसलिए यीशु कहता है, अगर तुम इस मंदिर को विनाश करोगे, तो मैं उसे 3 दिन में फिर से उभार दूंगा.
And the Pharisees looked at him and said, "This has taken 46 years to build."
और फरसियों ने देखकर कहा, इसको 46 साल लगे हैं बनाने के लिए.
And Jesus said, "You break it down, I will build it up in 3 days' time."
और यीशु कहता है, तुम उसे विनाश करो और मैं 3 दिन में उसे उभार दूंगा.
He is talking about himself, the temple that will come down from heaven.
और वो अपने आप के बारे में बता रहा है, वह मंदिर जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आने वाला है.
The signet ring of God.
और वो खास अंगूठी जो परमेश्वर की है.
That will be glorious.
और वो महिमा में होगी.
That has been glorious.
और वो महिमा में रही है.
Hallelujah.
Hallelujah.
As we are waiting for Jesus to come back again.
और जैसे हम रुके हैं यीशु के दोबारा लौटने के लिए.
I'll tell you something.
मैं आपको कुछ बताऊं.
What is going to happen? It's going to be more glorious than anything that the world has ever seen.
और जो होने वाला है वो दुनिया ने देखा उससे भी बढ़कर महिमा में होगा.
When he comes again, everything will be made new.
और जब वो दोबारा आएगा हर एक बात नई हो जाएगी.
And all those who believe in him will be with him forever.
और जो कोई इस पर विश्वास करते हैं वो हमेशा के लिए यीशु के साथ होंगे.
He is the glorious, the signet ring.
और वही वो खास अंगूठी है.
He is the desire of the nation.
और वो राष्ट्र भर की इच्छा है.
He is the future house.
और वो भविष्य का घर है.
And is we can trust in him.
और हम उस पर भरोसा कर सकते हैं.
Amen.
Amen.
He loves this church.
वो यह कलीसिया से बेहद प्रेम करता है.
The Bible talks about.
और शास्त्र बताता है.
He said, "I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it."
मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के द्वार उस पर प्रबल नहीं हो सकेंगे.
I want to tell you,
every
favor and blessing in some ways wrapped up with the church.
और हर एक आशीष और प्रसन्नता कलीसिया के साथ ही जुड़ा होता है.
It is wrapped up with God's people.
और वो कलीसिया के लोगों के बीच में ही होता है.
And God wants us to tap into that favor.
और परमेश्वर चाहता है उस प्रसन्नता का हम उपयोग ले ले.
What kind of house we want to build?
हम किस तरह का घर बनाना चाहते हैं?
We want to build a glorious house.
हम एक महिमा में घर बनाना चाहते हैं.
Because God is in the midst of her.
क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच है.
Amen.
Amen.
When God is in the midst of her, it is beautiful.
जब परमेश्वर हमारे बीच होता है तो घर खूबसूरत हो जाता है.
We can come from poor background, we can come from middle class, rich, it doesn't matter. God beautifies his house.
हम गरीब घर से आ सकते हैं, मध्यम वर्ग या अमीर, लेकिन परमेश्वर अपने घर को शुद्ध करता है.
Hallelujah.
Amen.
From this day, I want to bless you.
आज के दिन से मैं आपको आशीषित करना चाहता हूँ.
That's what it says.
यही बात यहाँ पर कही.
Today is the first day for the rest of your life.
आज आपके आगे के जीवन के लिए पहला दिन है.
And God says, I want to bless you.
और प्रभु कहना चाहता है,
मैं
आपको आशीषित करना चाहता हूँ.
I will bless you.
आज के दिन से मैं आपको आशीषित करूँगा.
We can tap into that blessing.
हम उस आशीष का उपयोग ले सकते हैं.
God made a covenant with Abraham.
और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी.
And he showed his generosity.
और उसने अपनी वो दानता दीनता दिखाई थी.
He never asked Abraham. Abraham to make a covenant.
और उसने अब्राहम को कभी वाचा बांधने के लिए नहीं कहा.
He says, I will make a covenant.
उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ एक वाचा
बांधूंगा. And he has made a covenant to bless us.
और उसने वो वाचा हमारे साथ भी बांधी है कि वह हमें आशीषित करेगा.
Hallelujah.
Hallelujah.
He wants to bless us.
वह हमें आशीषित करना चाहता है.
From today, I will bless you.
आज से मैं आपको आशीषित करूंगा.
I am with you.
मैं आपके साथ हूं.
I am for you.
मैं आपके लिए हूं.
Let's change our priorities a bit.
हमें हमारी प्राथमिकताओं को बदलना है.
Let's believe God with all our heart.
परमेश्वर पर विश्वास करना है पूरे हृदय से.
Let's believe God with faith for all the promises.
परमेश्वर को पूरे भरोसे से विश्वास करें उसकी प्रतिज्ञाओं पर.
He can rebuild.
वो फिर से बना सकता
He
है.
He can fill his house.
वो अपने घर को भर सकता है.
He can give.
वो दे सकता है.
You know, one day of his favor is better than 1,000 days of labor.
और उसकी एक दिन प्रसन्नता के हजार दिन मेहनत से भले है.
Amen.
Amen.
One day of his favor is better than 1,000 days of labor.
उसकी प्रसन्नता का एक दिन हजार दिन जो मेहनत का है उससे बहुत ही उत्तम है.
From this day on, I will bless you.
आज के दिन से मैं आपको आशीषित करूंगा.
Can we believe God for that?
क्या आप परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं वो बात के लिए?
He is the same God yesterday, today and forever.
परमेश्वर वही है जो कल था, आज था और वो हमेशा के लिए वही रहेगा.
They just believed and they saw breakthrough.
और उन्होंने विश्वास किया और वो बातों में आगे निकल
गए. And this morning he wants us to believe.
और इस सुबह वह चाहता है कि हम भी विश्वास करें.
And as Sweden shared, God wants to entrust us with something big.
और जैसे स्पीतन ने हमें बताया, परमेश्वर कुछ बड़ा करने के लिए हमें कह रहा है, बड़ी जिम्मेदारी दे रहा है और उसे केवल हमारा विश्वास ही चाहिए. आइए हमारी आंखों को बंद करें.
We have come to the end of this morning.
इस सुबह के अंत की ओर हम आए हैं.
Can you just reflect on what I just shared?
क्या आप फिर से वो मन में दोहरा सकते हैं जो मैंने बांटा?
The message of Haggai is nothing.
हगाई का संदेश और कुछ भी नहीं.
This is the message.
यह संदेश है.
Hopeless people.
निराशाहीन लोग
they believed.
उन्होंने विश्वास किया.
They believed.
उन्होंने विश्वास किया.
They changed their priorities.
उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को बदल दिया.
And they obeyed.
और उन्होंने आज्ञा मानी.
And they built a glorious house for him.
और उन्होंने एक महिमामय कलीसिया बनाई.
Each one of us can do that.
हर एक यहाँ पर वो कर सकता
है. We can believe.
हम विश्वास कर सकते हैं.
We can prioritize our time.
हमारे समय को हम प्राथमिकता दे सकते हैं.
We can obey the small things that he asks us to do.
छोटी-छोटी बातों में हम आज्ञा मान सकते हैं.
And we can build a glorious church for him.
और हम परमेश्वर के लिए एक महिमामय कलीसिया बना सकते हैं.
Can you all stand? I just want to pray.
क्या हम सब खड़े हो सकते हैं? मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ.